एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प और तेजी से फैल रहे धार्मिक आंदोलन पर रोशनी डालती है।
बिल्कुल।
विलियम के काए की पेंटिकॉस्टलिज्म।
बिल्कुल, और ये विषय आज बहुत अहम है। सही कहा, हम सब ने शायद ऐसे चर्च या प्रार्थना सभाओं के बारे में सुना होगा या देखा भी होगा जहाँ लोग नाचते गाते बड़े जोश में प्रार्थना करते हैं।
हाँ हाँ
या फिर वो बीमारियों से चमत्कारिक ढंग से ठीक होने का दावा करते हैं। तो मोटे तौर पर यही पेंटिकॉस्टलिज्म है। और ये देखिए कि 20वीं सदी की शुरुआत में ये अमेरिका के हाशिए पर खड़े समुदायों से शुरू हुआ और आज दुनिया भर में अंदाजन 60 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका है।
60 करोड़, ये तो मतलब जबरदस्त आंकड़ा है।
हाँ, बहुत बड़ा।
मतलब ये ईसाई धर्म के अंदर ही शायद सबसे तेजी से बढ़ने वाली धाराओं में से एक है।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो आज हम इसी की जड़ें, इसकी मान्यताएं और इसके इतने फैलाव के पीछे क्या कारण है, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और हमारी ये बातचीत के की किताब पर आधारित दो अकादमिक विश्लेषणों का निचोड़ है, तो गहराई में जाने की कोशिश करेंगे।
चलिए तो शुरू करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें, विलियम के काए।
हाँ जरूर। देखिए, विलियम के काए कोई साधारण अकादमिक नहीं है। वे वेल्स की ग्लिंडू रूर यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी के एमेरिटस प्रोफेसर हैं और लगभग आप मान लीजिए 30-40 साल से इसी विषय पर, यानी पेंटेकोस्टलिज्म और ये जो कैरिज्मेटिक क्रिश्चियनिटी है, इस पर रिसर्च कर रहे हैं।
अच्छा, 30-40 साल?
हाँ, एक लंबा समय।
और मैंने सुना है सिर्फ रिसर्च ही नहीं, उन्हें इन समुदायों के साथ रहने और उन्हें करीब से देखने का भी अनुभव है। यही बात उन्हें खास बनाती है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, यही उनका वो दोहरा नजरिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वो अकादमिक रिगर, यानी जो गहरी छानबीन और विश्लेषण होता है, उसको वो सहानुभूति के साथ जोड़ते हैं। वो इसे सिर्फ एक अजीब धार्मिक घटना की तरह नहीं देखते।
अच्छा।
बल्कि इसकी जटिलताओं को, इसकी विविधता को समझते हैं। और क्योंकि वो दुनिया भर में घूमे हैं, रिसर्च किए हैं, तो वो जानते हैं कि अफ्रीका का पेंटिकॉस्टलिज्म लैटिन अमेरिका या एशिया के पेंटिकॉस्टलिज्म से अलग हो सकता है।
मतलब एक ही चीज नहीं है हर जगह?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक बड़े परिवार की तरह देखते हैं जिसकी कई अलग अलग शाखाएं हैं।
तो फिर किताब का मूल सार क्या है? ये सिर्फ इतिहास या मान्यताओं की लिस्ट तो नहीं होगी?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये किताब पेंटिकॉस्टलिज्म का एक बहुत ही संतुलित और गहराई से परिचय देती है। केयर कोशिश करते हैं कि हम इसे लेकर जो बनी बनाई धारणाएं हैं ना।
हाँ, जैसे कि ये सिर्फ भावनात्मक उबाल है।
हाँ, या अशिक्षित लोगों का धर्म है, वैसी चीजों से आगे बढ़कर देखें। वो इसकी धार्मिक गहराई, अलग अलग संस्कृतियों में ढल जाने की इसकी कमाल की क्षमता और दुनिया पर इसके असर को समझाते हैं।
और उनका मुख्य तर्क क्या है? मतलब क्या चीज पेंटिकॉस्टलिज्म को इतना अलग या प्रभावशाली बनाती है?
देखिए, के का मानना है कि पेंटिकॉस्टलिज्म ने ईसाई पूजा और सोच में एक तरह की क्रांति ला दी। इसने पवित्र आत्मा, मतलब होली स्पिरिट, के अनुभव और उसके उपहारों पर बहुत जोर दिया।
उपहार जैसे कि?
जैसे कि अन्य भाषा में बोलना, जिसे वो ग्लोसोलेलिया कहते हैं, ईश्वर से सीधे संदेश मिलना या भविष्यवाणी करना और प्रार्थना से बीमारों का ठीक होना।
ऐसा नहीं कि ये चीजें पहले थी ही नहीं, लेकिन पेंटिकॉस्टलिज्म ने इन्हें बिल्कुल केंद्र में ला दिया।
अच्छा।
यानी सिर्फ किताबों या पादरियों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे ईश्वर से जुड़ने का अनुभव, इस पर फोकस है।
हाँ हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि यही इसकी कुंजी है। के कहते हैं कि इसकी सफलता सिर्फ इन अनोखी धार्मिक बातों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में खुद को बड़ी आसानी से ढाल लेता है।
अच्छा, कैसे?
वहाँ की भाषा, वहाँ का संगीत, वहाँ की चिंताएं, उन सबको अपना लेता है, लेकिन फिर भी अपने मूल सिद्धांतों, मतलब ईश्वर के साथ सीधे व्यक्तिगत अनुभव को बनाए रखता है।
दिलचस्प है।
तो कैरिज्मेटिक इसे सिर्फ शोर शराबा या भावनात्मक चीज नहीं मानते, बल्कि एक जटिल और प्रभावशाली धार्मिक आंदोलन मानते हैं, जिसे समझे बिना हम आज की दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ सकते।
चलिए तो फिर किताब के कुछ अहम हिस्सों में गोता लगाते हैं। जैसा आपने कहा, गहराई में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है इस आंदोलन की? इतिहास क्या है?
हाँ, तो इसकी जड़ें जाती हैं 19वीं सदी के अमेरिका में, खासकर दो आंदोलनों में, रिवाइवलिज्म और होलीनेस मूवमेंट। ये ऐसे धार्मिक आंदोलन थे जहाँ लोग ईश्वर के साथ गहरे व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव पर जोर देते थे, न कि सिर्फ रस्मों रिवाजों पर।
अच्छा।
वो मानते थे कि ईश्वर आज भी चमत्कार कर सकता है, जैसे बाइबल के समय में करता था।
और फिर वो लॉस एंजलिस वाली घटना का जिक्र आता है, अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, वो क्या था?
म्यूर, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी पादरी थे।
अच्छा।
और कमाल की बात ये थी, जैसा आपने पहले इशारा किया, कि उस समय अमेरिका में नस्लीय भेदभाव बहुत ज्यादा था।
हाँ, उस जमाने में तो।
लेकिन इस सभा में हर रंग हर नस्ल के लोग, काले गोरे लातिनी एशियाई अप्रवासी, सब एक साथ आते थे, प्रार्थना करते थे और पवित्र आत्मा के अनुभव की बात करते थे, खासकर वो अन्य भाषा में बोलना।
ये तो वाकई क्रांतिकारी रहा होगा उस वक्त।
बिल्कुल। और यहीं से, इसी बहुसांस्कृतिक माहौल से, ये आंदोलन दुनिया भर में तेजी से फैलना शुरू हुआ।
और ये भी सुना है कि शुरुआत में ये हाशिए के लोगों में ज्यादा फैला,
गरीब तबके में या अप्रवासियों में।
हाँ, ये बात सही है। अफ्रीकी अमेरिकी, नए अप्रवासी, मजदूर वर्ग, मतलब ऐसे लोग जिन्हें समाज में ज्यादा सम्मान या आवाज नहीं मिलती थी।
उन्हें यहाँ एक अपनापन मिला, एक शक्ति का एहसास हुआ। यहाँ आपकी जाति या आपकी शिक्षा उतनी मायने नहीं रखती थी जितना कि ईश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत अनुभव।
अच्छा, तो ये तो हुई शुरुआत। अब इनकी मुख्य धार्मिक मान्यताओं की बात करें कि किन बातों पर जोर देते हैं।
सबसे मुख्य बात है पवित्र आत्मा के उपहारों पर विश्वास, जिन्हें बाइबल की भाषा में कैरिज्मेटा कहते हैं। मतलब उनका मानना है कि बाइबल के नए नियम में जिन चमत्कारी शक्तियों का जिक्र है, जैसे बीमारों को ठीक करना, भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा बोलना, वो सब आज भी विश्वासियों को मिल सकती हैं अगर उनमें विश्वास हो। खेक बताते हैं कि कैसे ये लोग बाइबल से ही तर्क देकर इन बातों को सही ठहराते हैं।
लेकिन क्या ये पारंपरिक ईसाई मान्यताओं से बिल्कुल अलग हो जाता है या जुड़ाव भी है?
नहीं नहीं, पूरी तरह अलग नहीं है, जुड़ाव मजबूत है। ये यीशु को मानते हैं, बाइबल को ईश्वर का वचन मानते हैं, लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा की भूमिका और उसके प्रत्यक्ष महसूस किए जाने वाले अनुभव पर इनका जोर पारंपरिक चर्चों से कहीं ज्यादा है।
अच्छा।
इनका मानना है कि ईसाई बनने के बाद एक और खास अनुभव होता है, जिसे ये आत्मा का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। ये अनुभव उनके अनुसार व्यक्ति को ईश्वर की सेवा के लिए खास शक्ति देता है, और जिसका एक बाहरी सबूत अन्य भाषा बोलना हो सकता है। सब नहीं मानते कि ये जरूरी सबूत है, पर कई मानते हैं।
अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे हैरान करने वाली है, इसका दुनिया भर में फैलना। अमेरिका से निकलकर ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में कैसे इतना कामयाब हो गया, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है।
हाँ, और यही के की किताब का एक बहुत ही मजबूत और दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि पश्चिम से कोई धर्म गया और वहां थोप दिया गया।
अच्छा।
नहीं, ये दिखाते हैं कि कैसे ये आंदोलन लोकल कल्चर में रच बस गया। इसने वहां के संगीत को अपनाया, वहां की भाषाओं में प्रार्थनाएं होने लगीं, और यहां तक कि लोगों की जो स्थानीय चिंताएं थीं, जैसे बुरी आत्माओं का डर, जादू टोना, बीमारियां, उनको भी इसने सीधे संबोधित किया, अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश की।
अच्छा, मतलब ये विदेशी नहीं लगा, बल्कि लोगों को लगा कि ये हमारी अपनी समस्याओं की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, अपना सा लगा। और इसमें स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय पादरियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अक्सर ये उन जगहों पर ज्यादा कामयाब हुआ जहां पुराने पारंपरिक मिशनरी चर्च संघर्ष कर रहे थे या लोगों से उतना जुड़ नहीं पा रहे थे। के तर्क देते हैं कि इसकी यही लचीलापन, अलग अलग माहौल में ढल जाने की क्षमता, इसकी वैश्विक सफलता का एक बड़ा राज है। इसने खुद को ग्लोबल रखा, मतलब एक वैश्विक पहचान रखी, पर साथ ही लोकल भी बना रहा।
और अगर सामाजिक नजरिए से देखें तो आपने कहा कि ये हाशिए के लोगों को आकर्षित करता था, क्या आज भी ऐसा है और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है?
हाँ, शुरुआत में तो ये बिल्कुल हाशिए के लोगों का आंदोलन था, और आज भी दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर विकासशील देशों में, ये गरीबों और वंचितों के बीच ज्यादा फैलता है। बॉकी बताते हैं कि पेंटेकोस्टल चर्च अक्सर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते, वो समुदाय के लिए एक सामाजिक सहारे का केंद्र बन जाता है।
कैसे, मतलब क्या करते हैं वो?
वो शिक्षा में मदद कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने में, या कभी कभी रोजगार ढूंढने में भी, एक तरह का सामाजिक नेटवर्क बन जाता है।
और वो समृद्धि धर्मशास्त्र, प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी वाली बात भी आती है बार बार, वो क्या चीज है? उस पर काफी विवाद भी होता है।
हाँ, वो है। प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी का मूल विचार ये है कि ईश्वर चाहता है कि उसके भक्त न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी समृद्ध हों, मतलब स्वस्थ रहें, पैसे वाले बने। हे मानते हैं कि ये विचारधारा गरीबों की बेहतर जिंदगी की सच्ची इच्छा को कहीं ना कहीं छूती है, लेकिन इस पर ये आलोचना भी जबरदस्त होती है कि ये झूठी उम्मीदें देती है या कभी कभी धर्म के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठने का जरिया बन जाती है।
तो कई का क्या रुख है इस पर,
کہ اس پر ایک سنتلت نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ اس کی اپیل کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کی آلوچناؤں کو بھی درج کرتے ہیں۔
اور سماج پر اثر کی بات کریں تو کچھ ٹھوس بدلاؤ دکھتے ہیں؟
ہاں، ایک دلچسپ سدھانت ہے جسے کہ ریڈیمپٹیو لفٹ کہتے ہیں۔
ریڈیمپٹیو لفٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ اس آندولن سے جڑتے ہیں تو اکثر ان کے جیون جینے کے طریقے میں کچھ ویوہارک بدلاؤ آتے ہیں، جیسے مان لیجئے شراب پینا چھوڑ دینا، یا جوا کھیلنا بند کر دینا، زیادہ محنت سے کام کرنا، پریوار پر زیادہ دھیان دینا۔
اچھا، یہ تو سکاراتمک بدلاؤ ہے۔
ہاں، اور کے کا ترک ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بدلاؤ دھیرے دھیرے اس ویکتی اور اس کے پریوار کو غریبی کے چکر سے باہر نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
تو اس طرح دھرم یہاں ایک طرح سے سماجک اتھان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
یہ تو صاف ہو گیا کہ پینٹیکوسٹلزم کوئی ایک مونولیتھک چیز نہیں ہے، مطلب اس میں کافی وویدھتا ہے، الگ الگ روپ ہیں۔
ہاں ہاں، بہت زیادہ وویدھتا ہے۔ کے اپنی کتاب میں مکھیہ روپ سے تین دھاراؤں میں انتر بتاتے ہیں۔ پہلا ہے کلاسیکل پینٹیکوسٹلزم، یہ سب سے پرانی دھارائیں ہیں، جیسے اسمبلیز آف گاڈ، جیسے چرچ، جو 20ویں صدی کی شروعات میں بنے تھے۔ دوسرا ہے کیریزمیٹک رینیول، یہ وہ آندولن ہے جو 1960-70 کے دشک میں شروع ہوا۔ اس میں کیا ہوا کہ پینٹیکوسٹل جیسی پرتھائیں، جیسے انیہ بھاشا بولنا، اپچار کی پرارتھنا کرنا، یہ سب کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ جیسے مکھیہ دھارا کے پرانے چرچوں کے اندر ہی پھیلنے لگی۔
اچھا، مطلب یہ الگ چرچ نہیں تھے، خوب استعمال کرتے اپنے سندیش کو پھیلانے کے لیے۔
اور ان میں آپس میں فرق بھی ہوتے ہوں گے پھر، مانیتاؤں میں یا کام کرنے کے طریقے میں؟
ہاں بالکل، جیسے کہ انیہ بھاشا بولنے کو کتنا ضروری مانا جاتا ہے، اس پر مت بھید ہو سکتا ہے، چرچ کیسے چلایا جاتا ہے، لیڈرشپ کا اسٹرکچر کیا ہے، یا سماجک مدوں پر ان کا کیا رخ ہے، ان سب باتوں میں انتر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں، ٹیکنالوجی اور میڈیا کا استعمال آج کل لگ بھگ سبھی کرتے ہیں، خاص کر نیو پینٹیکوسٹلز۔
کیا کہ جو اس کی چنوتیوں یا جو وواد اس سے جڑے ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں، یا صرف اچھی باتیں ہی بتاتے ہیں؟
بات کی، وہ اسے وستار سے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بھاوناتمک روپ سے لوگوں کا استعمال کرنے یا کچھ نیتاؤں کے بہت زیادہ ادھیکاروادی، اتھارٹیرین ہونے کی چنتائیں بھی اٹھتی ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔
اور وہ چمتکاروں کے دعوے؟
ہاں، چمتکاروں اور علاجوں کے دعووں کی پرامانکتا پر بھی سوال اٹھتے ہیں، اور کے ان سوالوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔
اور کیا آندولن کے اندر بھی کچھ بحثیں چلتی ہیں؟
ضرور ضرور، جیسے کہ یہ جو آدھیاتمک اپہار ہیں، ان کا صحیح استعمال کیسے ہو، کہیں ان کا دکھاوا تو نہیں ہو رہا، چرچ میں جو پیسہ آتا ہے اس کا حساب کتاب کیسے رکھا جائے، پاردرشتا کیسے ہو، جواب دہی کیسے طے ہو۔
یہ تو اہم سوال ہے۔
ہاں، ان سب پر آندولن کے اندر بھی لگاتار چرچا اور بحث چلتی رہتی ہے، اور کچھ دیشوں میں راجنیتی کے ساتھ اس کے جڑاؤ یا راجنیتک شکتی کے استعمال پر بھی سوال اٹھتے ہیں اور بحث ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو کل ملا کے اتنی ساری باتیں ہم نے کی، اس پوری چرچا سے مکھیہ باتیں کیا نکلتی ہیں؟ وہ کون سی تین چار سب سے اہم چیزیں ہیں جو شروتاؤں کو پینٹیکوسٹلزم کے بارے میں سمجھنی چاہیے آپ کے حساب سے؟
میرے حساب سے کچھ چیزیں ہیں جو بہت خاص ہیں اور دھیان میں رکھنی چاہیے۔ پہلی اور شاید سب سے بڑی بات، وہ ہے ایشور کے ساتھ سیدھا ویکتیگت انوبھو پر زور۔ یہ دھرم کو ایک طرح سے پادریوں یا جٹل رسموں کے بندھن سے نکال کر عام آدمی کے انوبھو تک لے آتا ہے، مطلب کوئی بھی، چاہے اس کی ساماجک یا شکشک پرشتبھومی کچھ بھی ہو، وہ سیدھے ایشور سے جڑ سکتا ہے، اس کی شکتی محسوس کر سکتا ہے۔
ہاں، یہ تو ہمارے دیش میں بھی جو بھکتی آندولن تھا اس میں بھی کچھ ایسی بات تھی، ہے نا، جہاں جاتی یا پانڈتیہ سے زیادہ مہتو ویکتیگت بھکتی اور انوبھو کا تھا۔
بالکل بالکل، صحیح اپروچ ہے یہ۔ دوسری اہم بات ہے اس کی زبردست لچیلاپن اور ستھانیہ سنسکرتیوں میں ڈھل جانے کی کھمتا۔ یہ کمال کا ہے کہ کیسے یہ آندولن دنیا کے ہر کونے میں جا کر وہاں کا رنگ روپ اپنا لیتا ہے۔ جیسا ہم نے کہا، بھارت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے چرچوں میں ستھانیہ بھاشاؤں میں بھجن گائے جاتے ہیں، ستھانیہ سنگیت، ڈھولک، تبلا، اس کا استعمال ہوتا ہے، یہ باہری نہیں لگتا۔
صحیح کہا۔ اور تیسری بات، شاید وہ آدھونک دنیا میں الوکک پر وشواس بنائے رکھنا۔
ہاں، یہ بات مجھے بھی بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کا یوگ ویگیانک یوگ ہے، جہاں ہر چیز کا تارکک، ریشنل جواب ڈھونڈا جاتا ہے۔
بالکل۔
ایسے میں یہ آندولن چمتکار، دیوی اپچار، بھوشوانی جیسی باتوں میں گہرے وشواس کو نہ صرف بنائے رکھتا ہے بلکہ پھیلاتا بھی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کی کچھ گہری ضرورتیں ہیں، جیسے امید کی ضرورت، تکلیف میں سہارے کی ضرورت، جیون کے ارتھ کی تلاش، جو شاید صرف ترک اور وگیان سے پوری نہیں ہوتی۔
اور ایک اور بات جو مجھے بھی کافی اہم لگی، وہ ہے سماجک بدلاؤ لانے کی اس کی کھمتا، خاص کر حاشیے پر پڑے لوگوں کے لیے۔ وہ جو ریڈیمپٹیو لفٹ والی بات آپ نے بتائی، ये सिर्फ परलोक सुधारने की बात नहीं करता, बल्कि इसी जीवन को यहीं पर बेहतर बनाने पर भी जोर देता है, भले ही उसके तरीके विवादास्पद हों कभी कभी।
हाँ, ये सामाजिक आयाम बहुत महत्वपूर्ण है इसका। के की किताब में कुछ ऐसे विचार हैं, या कह लीजिए उनके तर्कों के सार हैं, जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। सीधे कोटेशन शायद न हो, पर मूल विचार ये हैं। एक तो ये कि पेंटिकॉस्टलिज्म ईश्वर के साथ तुरंत सीधे संपर्क का अनुभव देता है। ये इसके अनुभवात्मक मतलब एक्सपीरियंशियल होने पर जोर देता है। ऐसा विश्वास जिसे महसूस किया जा सके, जो सिर्फ किताबी ना हो। दूसरा ये है, ये आंदोलन वहीं कामयाब होता है जहां ये माहौल के हिसाब से खुद को ढालता है, और वहीं अटक जाता है जहां ये कट्टर या इनफ्लेक्सिबल बना रहता है। इसकी सांस्कृतिक लचीलापन की अहमियत बताता है।
बिल्कुल।
और समृद्धि धर्मशास्त्र पर वो एक संतुलित बात कहते हैं। ये लोगों की बेहतर जीवन की सच्ची इच्छा को तो छूता है, पर अक्सर झूठी उम्मीदें भी जगा देता है। ये इसके जटिल और विवादास्पद पहलू को स्वीकार करता है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारे समाज को समझने में क्या मतलब है? मतलब हम श्रोता इससे क्या ले सकते हैं?
देखिए, कई मतलब हैं। पहली बात तो दुनिया को समझने के लिए ये जरूरी है। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के कई देशों में ये एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक ताकत बन चुका है। वहां क्या हो रहा है, वहां की राजनीति, वहां के सामाजिक मूल्य कैसे बदल रहे हैं, ये समझने के लिए पेंटेकोस्टलिज्म को समझना जरूरी है। पत्रकारों के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, एनजीओ में काम करने वालों के लिए, सबके लिए।
और समुदाय बनाने की कला के बारे में आपने कहा था, क्या हम वाकई इनसे कुछ सीख सकते हैं?
हाँ, मुझे तो लगता है बिल्कुल सीख सकते हैं। ये लोग बहुत मजबूत और एक दूसरे से जुड़े हुए समुदाय बनाते हैं। सदस्य एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं मुश्किल में भी। कोई भी संगठन, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई एनजीओ हो, या कोई सामाजिक आंदोलन ही क्यों ना हो, वो इनसे ये सीख सकता है कि अपने सदस्यों में अपनेपन की, बिलोंगिंग की भावना कैसे जगाई जाए और उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए।
और शायद धर्म की विविधता को समझने में भी मदद मिलती है ना, कि धर्म एक ही तरह का नहीं होता।
हाँ बिल्कुल। ये किताब दिखाती है कि एक ही धार्मिक परंपरा जैसे ईसाई धर्म अलग अलग संस्कृतियों में कितने अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी धर्म को या किसी भी समूह को एक ही खांचे में फिट नहीं करना चाहिए। दुनिया को समझने के लिए ये धार्मिक साक्षरता, ये न्यूआंस समझना बहुत जरूरी है।
एक और चीज मेरे ध्यान में आई थी, कहानियों की ताकत। आपने बताया कि यह आंदोलन व्यक्तिगत गवाहियों, मतलब मेरे जीवन में ईश्वर ने ये चमत्कार किया या मेरा जीवन कैसे बदला, ऐसी कहानियों से फैलता है।
हाँ, सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि कहानियां, व्यक्तिगत अनुभव अक्सर आंकड़ों या तर्कों से ज्यादा असरदार होती हैं लोगों के दिल और दिमाग को बदलने में। ये बात संचार, मार्केटिंग या लीडरशिप के क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। स्टोरीज मैटर।
मेरे लिए सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कैसे एक आंदोलन जो इतने हाशिए से शुरू हुआ, मतलब बिल्कुल किनारे से, वो न सिर्फ टिका रहा बल्कि पूरी दुनिया में इतना प्रभावशाली बन गया, और खासकर उन लोगों को आवाज और एक तरह की ताकत देकर जिन्हें अक्सर समाज में अनदेखा कर दिया जाता है। इसकी ये जो जमीनी ताकत है, ग्रास रूट अपील, वो वाकई कमाल की है।
और मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि ये आंदोलन दिखाता है कि धर्म आज की इस तथाकथित आधुनिक सेक्युलर दुनिया में भी कितना ज्यादा प्रासंगिक और शक्तिशाली हो सकता है। कम नहीं हुआ है उसका असर, खासकर तब जब वो लोगों की असली गहरी जरूरतों, चाहे वो आध्यात्मिक हों, सामाजिक हों, या यहाँ तक कि भौतिक जरूरतें हों, उनको सीधे संबोधित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए धार्मिक आंदोलनों को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। इनका असर सिर्फ चर्च या मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है, समाज पर गहरा असर है।
एक आखिरी सवाल या कह लीजिए एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। भविष्य में ये जो संतुलन है ना, व्यक्तिगत अनुभव वाले विश्वास और संगठित धर्म के बीच का, वो कैसे विकसित होगा? सिर्फ पेंटेकोस्टलिज्म में ही नहीं, बल्कि शायद दूसरे धर्मों में और यहाँ तक कि सेक्युलर आंदोलनों में भी। क्या अनुभव पर ये बढ़ता हुआ जोर संस्थाओं को चुनौती देगा, या उन्हें शायद नए तरीकों से जिंदा रहने में मदद करेगा? ये सोचने वाली बातें हैं ना?
हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।